तृतीय अध्याय देख रहे थे कर्म योग। सबसे पहले भगवान ने कहा कि कोई भी आदमी बिना कर्म के नहीं रह सकता, आप एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकते। और उसके बाद भगवान ने बताया कि सृष्टि में सब जगह कर्म चल रहा है, ये सारी सृष्टि कर्म के ऊपर ही चल रही है। एक मनुष्य को छोड़कर बाकी सृष्टि के सब लोग जो हैं एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करते हैं कर्म के लिए। एक सृष्टि चक्र चल रहा है और उस सृष्टि चक्र के अंदर केवल एक आदमी ऐसा व्यक्ति है जो सृष्टि चक्र का जो क्रम चल रहा है, जिस हिसाब से चल रहा है, जिस रूल से चल रहा है, उस रूल को नहीं मानता। अच्छा, सृष्टि में कर्म चल रहा है और भगवान कहते हैं कि सबको जो है वैसे ही कर्म करना चाहिए जैसे सृष्टि कर्म कर रही है। सृष्टि जिस हिसाब से कर्म कर रही है वैसे ही सबको अपने अपने कर्तव्य कर्म करने चाहिए। अपने अपने कर्तव्य कर्म अपनी अपनी वासनाओं के हिसाब से आपके जो कर्तव्य कर्म बनते हैं वो कर्तव्य कर्म कीजिए, ताकि वो कर्तव्य कर्म आपके आस्ते आस्ते वासना को कम कर देंगे। वासना जब कम हो जाएगी तब आप ज्ञान के अधिकारी होगे, उसके पहले आप ज्ञान के अधिकारी नहीं हो सकते। तो अर्जुन सोच रहा था कि क्या मेरे को भी कर्तव्य कर्म करने होंगे। उसको एक शंका हो गई थी ना कि भगवान आप तो दूसरे अध्याय में ज्ञान की भी बहुत प्रशंसा किए हो और कर्मयोग की बहुत प्रशंसा किए हो, ज्ञान योग हमको लगता थोड़ा अच्छा है, काम नहीं करना पड़ेगा। कर्मयोग आप बार बार खाली कहते हो करो युद्ध करो युद्ध करो युद्ध करो, ये मरने मारने वाली बात अच्छी नहीं लगती है, ज्ञान वाली अच्छी लगती है। तो भगवान कहते हैं नहीं, आपको तो युद्ध करना ही होगा। एक ऐसा व्यक्ति है जिसके कर्तव्य कर्म नहीं है, एक्सेप्शन टू द रूल केवल एक पर्सन। एक ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है, कौन है वो व्यक्ति? तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम तो नहीं हो, तुम नहीं हो, कौन है वो? तो इसने बताया कि यस्तु आत्मरतिरेव स्या आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्नेव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। ऐसे व्यक्ति का कार्य नहीं है जो आत्मरति में है। आत्मरति मतलब अपनी आत्मा में रेवल कर रहा है। हम कहां रेवल करते हैं? विषयों में रेवल करते हैं। देखो ये फर्क है, जो आत्मा में रेवल करता है और संसारी लोग अज्ञानी लोग विषयों में रेवल करते हैं, वो आत्मरति है, आत्मतृप्त है, कंटेंडेड। हम विषयों से कभी तृप्त नहीं होते, कभी तृप्ति नहीं मिलती विषयों से, फिर कुछ देर के बाद में और चाहिए, तृप्ति नहीं होती है। और तीसरा आत्मनिर्भर संतुष्ट कंटेंडेड, ऐसे व्यक्ति के लिए कर्तव्य कर्म नहीं है, बाकी सबके लिए है। तो ये व्यक्ति कौन हुआ? ज्ञानी। ज्ञानी मतलब जो अपनी आत्मा को, जो ब्रह्मन को जानता है, जो अपना ट्रू नेचर जानता है, वो ज्ञानी है। वो क्यों आत्मरति करता है? क्योंकि उसको सुख का सोर्स पता लग गया है। सुख का एक ही सोर्स है और उस सोर्स का उसको पता लग गया है, इसलिए वो उसके अंदर में अपना विश्राम करता है, उसमें रेवल करता है, आत्मरति है। उसके बाद भगवान कहते हैं नैव तस्य कृतेनार्थ, उसका कुछ करने का नहीं है, उसको दुनिया से कुछ पाना नहीं है। आपको अगर कुछ प्राप्तव्य है तो कर्तव्य है, जिसको दुनिया से कुछ नहीं पाना है उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। और अगर वो ना अकृतेन है कश्चन, अगर वो कुछ नहीं करता है तो प्रत्यवाय दोष नहीं लगता है। प्रत्यवाय दोष हम लोगों ने आगे देखा था कि अगर अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट अगर काम नहीं करते हो ना, सब जगह एक पेनल्टी क्लॉज होती है, आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं कंप्लीट किया तो आपको इतने पैसे देने होंगे। तो इसको प्रत्यवाय दोष भी नहीं लगता है। हम लोगों ने आगे ये भी देखा कि कर्मयोग आपने शुरू किया, थोड़ा सा भी किया ना, तो उसका फल बहुत ज्यादा होता है, आपको भय से मुक्त कर देता है। दूसरे कर्म आपको कंप्लीट करने के बाद में फल देते हैं, पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करोगे तब पैसे मिलेंगे, और कर्मयोग में अगर आपने थोड़ा सा भी किया तब भी आपको फल मिलता है। आप सोच के आए थे कि हम जो है श्राइन पूरा वैक्यूम करेंगे, एक घंटा लगेगा, मगर आप 10 मिनट के बाद में ही कुछ हो गया, कोई खबर आ गई, आपको काम छोड़ के जाना पड़ा। अगर आप क्लीनिंग लेडी होते तो मैं पैसे आपको देता? काम नहीं हुआ, नहीं देंगे। आपको पूरा श्राइन जो है वैक्यूम करना था, उसके लिए आपने इतने पैसे मांगे, मैं दूंगा आपको, करो काम पूरा। मगर जो कर्मयोग करता है, ईश्वर की खुशी के लिए जो करता है, उसको प्रत्यवाय दोष नहीं लगता। उसने जो 10 मिनट काम किया उसका भी उसको फल मिल जाएगा। और फल कैसा है? महतो भया, त्रायते महतो भया, उसको प्रोटेक्शन मिल गया, भय उसको नहीं होता है। न चाश्च सर्वभूतेषु कश्चित् व्यापारः, उसको किसी भी भूत से, किसी भी चीज से कुछ लेना देना नहीं है, किसी से भी कुछ लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? अरे हमको तो सुख मिल गया है, सुख का सागर हमें मिला हुआ है। हम अज्ञानी लोग सुख खोजते रहते हैं इधर उधर, ये भी इसमें भी सुख है, उसमें भी सुख है, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, इस हिसाब से हम चलते रहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं तस्मात असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर। इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए? तस्मात, तस्मात मतलब निगमन, कंक्लूजन। जब भी वर्ड भगवान तस्मात कहेंगे ना, आप समझ लेना भगवान ने पूरी आर्गुमेंट दे दी। देने के बाद में अब बताते हैं कि हमें क्या करना है। तो अज्ञानी को कहते हैं क्या करना है आपको? तस्मात असक्त सततम कार्य कर्म समाचर, सततम कार्य, बराबर अपना कर्म करो। क्या कर्म है? आपके नियत कर्म है। नियत कर्म क्या है? नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म। नित्य कर्म क्या है? भूल गए। नित्य कर्म क्या है? एवरीडे। क्या क्या है हमारे? नहाना
और क्या? खाली नहाना और खाना।
आपको आपके नित्य कर्म है, आपके प्रति हैं, आपके फैमिली के प्रति हैं, आपके समाज के प्रति हैं, स्टेट के प्रति हैं, कंट्री के प्रति हैं, विश्व के प्रति, आपके सबके प्रति आपके कुछ कर्म हैं, वो करने हैं। और इसके अलावा आपको 5 यज्ञ रोज करने हैं। क्या क्या है 5 यज्ञ? हाँ बोलो बोलो, सब मिलके एक एक बोलो हो जाएगा। हाँ, देव यज्ञ, हाँ, पितृ यज्ञ, हाँ,
गुरु यज्ञ।
अच्छा चलो, गुरु ने ऋषि यज्ञ कर देते हैं, चलो ऋषि यज्ञ। हाँ हाँ,
ऋषि इज गुरु ओनली।
हाँ, भूत यज्ञ,
भूत यज्ञ
और नृ यज्ञ,
मनुष्य
यज्ञ, नृ या मनुष्य यज्ञ। इतने कर्म आपको रोज करने हैं। ये आपकी डेली ड्यूटी है, ये करने हैं। तो आपको नित्य कर्म करने हैं, नैमित्त कर्म है। नैमित्त कर्म क्या है? वन सेवाई। आप किसी को अस्पताल में देखने जाते हो, वन सेवाइल होता है। किसी की मैरिज में गए, रोज तो नहीं होती है, वन सेवाइल होती है। किसी का श्राद्ध, वन सेवाइल। ये जाने चाहिए। तो नित्य एंड नैमित्तिक मिलके क्या बोलते हैं भगवान गीता में? नियत कर्म। नियत कर्म भगवान कहते हैं आप जरूर करो। कैसे करना चाहिए? समाचर। समाचर का शंकराचार्य जी अर्थ लगाते हैं ईश्वर अर्थम। समाचरण का मतलब ईश्वर अर्थम। अगर आप ईश्वर की प्रीति के लिए वो कर्म होगा तब वो समाचर हुआ, अगर नहीं हुआ तो वो कर्म समाचर नहीं है, वो सही कर्म नहीं है। अब आप सोचो, आप समाचर कर्म करते हो क्या? ईश्वर की प्रीति के लिए कर्म करते हो कि अपनी प्रीति के लिए करते हो? अपनी करते हो ना, तो अपनी प्रीति के लिए करना और ईश्वर की प्रीति के लिए करने में फर्क है क्या? है। कर्म कोई नया करने को कह रहे हैं भगवान ना? जो कर्म हमारा है, जो हमारा कर्तव्य कर्म है, हमारा वर्ण और आश्रम, हमारी सोसाइटी में जो पोजीशन है, उसके हिसाब से जो कर्म है वही करना है, वही कर्म करना है। अभी हम अपनी प्रीति के लिए करते हैं, भगवान कहते हैं मेरी प्रीति के लिए करो, तब वो समाचरण होगा। असक्तो ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुष है। जो भी पुरुष अगर वो इस तरह से कर्म करे, असक्त विदाउट गेटिंग अटेस्ट, और ईश्वर की प्रीति के लिए अगर करे, तो भगवान कहते हैं क्या होगा? परम आपनोति। परम मिल जाएगा आपको, ब्रह्मन मिल जाएगा, आत्मन मिल जाएगी आपको। सुख का जो है स्रोत पता लग जाएगा, कहां से सुख आता है। आप आनंद सागर में गोता लगाओगे, परम मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? अपने कर्म समाचरण। समाचरण मतलब ईश्वर की प्रीति के लिए करो। ये साइंस है, आपको पकड़ लेना होगा। कर्म आपको वही करने हैं जो आप कर रहे हो, मगर केवल उसमें जोड़ना है ईश्वर प्रीति, और कुछ नहीं करना है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन पूछता है कि सोच रहा है अपनी मन ही मन में, क्या पहली बार गिनिया पिग मेरे को बना रहे हो? आगे भी किसी ने किया ऐसा? भगवान कहते हैं ना, एग्जाम्पल देते हैं तुमको, तो एग्जाम्पल भी कैसा देना चाहिए? लोगों को पता होना चाहिए ना। आप कह दोगे कैसे, वो राजू ने किया था। अरे कौन सा राजू? तो भगवान कहते हैं कर्मन ने भी संसिद्धम आसिता जनका दया। जनक आदि लोगों ने किया था, जनक को सब जानते हैं, तो एग्जाम्पल ऐसा होना चाहिए जिसको सब जाने। बोलो उन्होंने किया था। लोक संग्रह में वापी सम्य पश्चन कर्त महर्षि। तो वो क्या करते थे? ज्ञान प्राप्त हो गया था उनको, ज्ञान प्राप्त के बाद ही वो राजा जनक ही थे, राज का कामकाज देखते थे, मगर असक्त थे, अनअटैच्ड। और आपको कहानी हमने सुनाई थी कि उनके पैलेस में आग लग गई, मगर वो वहां से जहां पर प्रवचन हो रहा था अपने गुरु के सामने से उठे नहीं, भागे नहीं। उनके लिए गुरु का प्रवचन इज मोर वैल्यूएबल देन द पैलेस। आपके लिए है क्या? आपके लिए बच्चों का क्रिकेट, बच्चों का ये प्रोग्राम, वो प्रोग्राम, बर्थडे, ये मोर इंपॉर्टेंट देन प्रवचन है ना। लोक संग्रह में वापी संप्रसन्न कर्तुम हर्षी। तो वो लोग जो है लोगों को सही रास्ता दिया। लोक संग्रह का मतलब क्या है? लोक संग्रह का मतलब लोगों को इकट्ठा नहीं करना है। लोक संग्रह का मतलब होता है कि लोग सब गलत रास्ते पर जा रहे हैं, उनको सही रास्ता दिखाना के काम ये ज्ञानी करता है। तो हम लोग कौन से गलत रास्ते पर जा रहे हैं? हम कर्म कर रहे हैं अपनी प्रीति के लिए। ज्ञानी आपको क्या कहता है? आप कर्म कीजिए, ये काम ज्ञानी का है। इसी को लोक संग्रह कहते हैं, उनको सही रास्ता दिखाना। कि आप जो कर रहे हो ये गलत रास्ता है। क्यों गलत रास्ता है? क्योंकि इससे आपकी लाइक डिसलाइक्स, आपकी वासना बढ़ेगी, और इस मनुष्य जीवन में आपको वासना का क्षय करना है। तो क्षय कैसे होगा? अपनी प्रीति के बदले ईश्वर की प्रीति कर दोगे तो हो जाएगा। ये इसका पीछे का विज्ञान है। ईश्वर की प्रीति के लिए अगर कर्म करेंगे तो हमारी वासना, हमारी लाइक्स एंड डिसलाइक्स खत्म हो जाती है। कैसे समझें भाई? आप लोग ऑफिस में नौकरी करते हो ना, तो नौकरी की जो वहां की कोई वासना आपकी बनती है क्या? कभी कोई वासना नहीं बनती है वहां। आपकी कोई लाइक्स डिसलाइक्स नहीं है, आपकी मर्जी से आपका काम नहीं चलता है। आपका एम्प्लॉयर जो बोलेगा वो आपको करना पड़ेगा, आप चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो। तो वहां वासना नहीं बनती है। आप 50 साल काम करके आते हो, रिटायर होके आते हो, उसके बाद में फिर भी आपकी उसको कंपनी के प्रति कोई वासना नहीं बनती है। क्यों नहीं बनी? कंपनी की प्रीति के लिए करते हैं ना, अपनी प्रीति के लिए नहीं है। हमें अगर सर्दी में कहे कि इस सर्दी में जाओ, बॉस्टन में जाओ, वहां काम करके आओ, 4 फुट वहां बर्फ है, मेरी प्रीति नहीं जाने की, हम नहीं जाएंगे। बॉस ने कहा उसकी प्रीति है, उसकी प्रीति के लिए हम जा रहे हैं वहां ना। क्या वासना बनी हमारी? नहीं बनी। उसी लिए अगर हम कर्म भगवान की प्रीति के लिए करें तो वासना बनेगी कि क्षय होगी? नहीं बनेगी। बहुत सिंपल साइंस इसके पीछे है। अगर विज्ञान समझ ले आदमी ना, तो उसको बड़ा जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। तो भगवान ने एग्जाम्पल भी दे दिया। भगवान सोच रहे पता नहीं अभी ये तो हुआ, हिस्ट्री में एक एग्जाम्पल दिया, अभी कोई कर रहा है? भगवान कहते हैं यस, मेरे को तुम देखो, न मैं पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिशिलोक किंचन नानवाप्तव्यम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणी। मेरे को देखो, मैं कर रहा हूं, मेरे कुछ लेना है कि इस दुनिया से? मैं तो मालिक हूं सारी दुनिया का ना, भगवान को इस दुनिया से क्या लेना है? कुछ नहीं लेना है, और फिर भी काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? तो यहां लिखा है यजद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एव इतरो जनः। जो जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं वो जैसा जैसा आचरण करते हैं, अदर लोग जो हैं, दूसरे लोग उसका अनुसरण करते हैं। श्रेष्ठ लोग को देख के सब उसका अनुसरण करते हैं। अब श्रेष्ठ आपके लिए कोई दूसरा हो सकता है, दूसरे के लिए दूसरा हो सकता है। बच्चों के लिए श्रेष्ठ क्या है? हाँ? बच्चों के लिए श्रेष्ठ हो जाएगा, वो बोलेंगे बैटमैन, और वो कौन सा है, एक और स्पाइडरमैन। या बच्चे जो खेलते हैं उसके लिए खिलाड़ी क्रिकेट प्लेयर होंगे, जो हिंदी मूवी देखते हैं वो बोलेंगे अमिताभ बच्चन। अभी तो नए नए सब आप नाम, हमको तो अभी नए के नामों का पता नहीं है। उनके लिए वो स्टैंडर्ड है, वो जो करेंगे हम भी वही करेंगे। क्योंकि स यत प्रमाणम कुरते, प्रमाणम मतलब वो स्टैंडर्ड हो गए। हम लोग के लिए क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए? हम लोग के लिए स्टैंडर्ड होना चाहिए स्थित प्रज्ञ पुरुष। दूसरे अध्याय में भगवान ने स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण बताए। ये लक्षण क्यों बताए? कि वो माइंड जो है ना, वो स्टैंडर्ड माइंड है। उस माइंड के स्टैंडर्ड की तरह हमको बनना है। तो हमको उनके गुणों का अनुकरण करना है। अब भगवान कहते हैं अच्छा चलो, मैं अगर नहीं करता हूं, यदि हम ना बढ़ते हम जातु कर्मनी अतंद्रिता, अगर मैं लेजी हो जाऊं, तंद्रा मीन्स लेजी, अगर मैं लेजी हो जाऊं, अगर मैं ना करूं, आलस्य करके तंद्रा करके ना करूं, मगर मैं कैसे करता हूं? अतंद्रिता, मैं बड़ा अलर्ट विजिलेंट होकर काम करता हूं, अगर ना करूं तो क्या होगा? भगवान कहते हैं मम वर्तमान अनुवर्तनते मनुष्या पार्थ सर्वस्व, सारे मनुष्य मेरी तरह हो जाएंगे। भगवान नहीं काम करते हैं तो हम भी नहीं करेंगे। जैसे हमारे यहां लोग कहते हैं हमारा बड़ा अफसर अगर घूस लेता है तो मैंने लिया तो क्या किया। आप भारत में जाओ ना, चपरासी लोग भी बोलेंगे फाइल नहीं देंगे हम आपको, ऑफिसर को नहीं देंगे, मेरे को पैसे दो पहले तब फाइल निकाल के देंगे। और ऑफिसर की हिम्मत नहीं है कि वो वहां से निकाल के आपका काम कर दे। क्यों? क्योंकि अगर उसने इस अलमारी में हाथ लगा दिया और फाइल अगर एक भी गायब हो गई, इधर उधर गई, कौन दायित्व होगा, किसका दायित्व होगा? ऑफिसर का, क्योंकि तुमने छू दिया उसको। फाइल निकालना और रखना काम चपरासी का है, और चपरासी निकालेगा नहीं जब तक आप उसको वजन नहीं दोगे, कुछ दो तब चपरासी फाइल निकालेगा, टेबल पर जाएगी, ऑफिसर बैठा रहता है, बोलो उसको बोलो पहले फाइल दे मेरे पास में, तब काम होगा। तो भगवान कहते हैं कि मेरे कारण, मेरे को देख के सब ऐसा ही हो जाएंगे। फिर उच्च देयूर्य में लोका नागपुर्याम कर्ण चेद हम संकरस्य च कर्ता श्याम उपहन्याम इमाम प्रजा, मैं इस सारी प्रजा का हरण हत्या करने वाला बन जाऊंगा अगर मैं काम ना करूं, और मेरे को देख के अगर सब काम करना बंद कर दें तो क्या होगा, सबकी हत्या हो जाएगी, सब हनन करने वाला मैं हो जाऊंगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि ज्ञानी को कैसे करना चाहिए काम। भगवान कहते हैं सक्ता कर्मणि विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, सक्ता कर्मण्य विद्वांसो, जैसे अविद्वान लोग कर्म के अंदर बहुत आसक्त हैं। क्यों कर्म में आ सकते हैं? क्योंकि कर्म फल मिलता है, फ्रूट्स ऑफ एक्शन आते हैं, 30 दिन के बाद में चेक आ जाता है, सबको मालूम है, अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, इसलिए लोग सब कर्म करते हैं, उसमें आसक्ति बहुत है। अविद्वान इग्नोरेंट पर्सन जो हैं, उनके अंदर अहंकार है कि मैं करने वाला हूं, और वो कर्म करते हैं, बहुत कर्म करते हैं। क्यों? कर्म फल आता है, इस वास्ते करते हैं। मगर वो जैसे काम करते हैं उसके अंदर क्या तकलीफ होती है? तकलीफ ये होती है कि उनकी वासना बढ़ती रहती है, क्योंकि वो अविद्वान है। विद्वान को कैसे कर्म करना चाहिए? कुर्यात विद्वांस तथा असक्त। जो अज्ञानी कैसे करते हैं? सक्त। विद्वान को कैसे कर्म करना चाहिए? बोलो उतनी जोश के साथ में करना चाहिए, मगर अनअटैच्ड। अज्ञानी कैसे कर्म करता है? जानी दोनों ही कर्म कर रहे हैं, दोनों ही कर्म कर रहे हैं। चिकित्सु लोक संग्रहम, मगर ज्ञानी को करना क्या है? बोले लोक संग्रह करना है। लोक संग्रह का मतलब क्या है? अभी बताया था आपको, लोगों को सही रास्ता दिखाना है। गुरुदेव कहते थे कि जो अज्ञानी लोग जैसे कर्म कर रहे हैं ना, तो तुम भी जो है उस उनकी स्पीड में तुम भी दौड़ो, जैसे कोई दौड़ रहा है, सारी जनता दौड़ रही है, ज्ञानी भी दौड़ रहा है, उसके साथ साथ दौड़ रहा है, फिर आस्ते आस्ते लीड लेगा, लीड लेके फिर वो ऐसे घूमेगा, सारी जनता उसके पीछे घूमेगी, अरे बाहर नहीं भीतर चलो। ये लोक संग्रह है। तो अविद्वान जैसे काम करता है, अज्ञानी जैसे काम करता है, ज्ञानी को भी उसी स्पीड में उतना ही काम करना है। फर्क केवल इतना है, अज्ञानी अटैच्ड होके करता है, ज्ञानी अनअटैच। जब आप अनअटैच होके काम करते हो तो उसके अंदर क्या होता है? आप आनंद में हो, आप खुशी हो। अज्ञानी, अज्ञानी टेंशन में है, स्ट्रेस में है, डिप्रेस्ड हो जाता है, डिजेक्टेड हो जाता है। तब वो अज्ञानी आके पूछता है, भाई आप भी कर्म कर रहे हो, हम भी कर्म कर रहे हैं, मगर आपके चेहरे पर ग्लो है, क्या बात है, आप खुश रहते हो, मैं तो रोता रहता हूँ, रोज ऑफिस जाता हूँ, रोज ऑफिस में झाड़ खाता हूँ, ये क्या बात हुई, आपके पास कोई राज बताइए हमको। तब वो राज बताता है कि देखो ऐसे करना है, अपनी ड्यूटी करो, कैसे करो, ईश्वर की प्रीति के लिए, ईश्वर की प्रीति के लिए अगर हम ड्यूटी करेंगे तो केवल ईश्वर ही नहीं प्रसन्न होगा। ईश्वर कौन है? बॉस का बॉस है कि नहीं? हमारे बॉस का बॉस कौन है? सुप्रीम बॉस ईश्वर है। अगर ईश्वर खुश है तो क्या हमारा बॉस खुश नहीं होगा? जरूर खुश होगा। तो ईश्वर की प्रीति के लिए करना है। मगर ऐसे विद्वान को कहा, न बुद्धि वेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम, बट डोंट डिस्टर्ब देम अज्ञानीज। आपको रास्ता दिखाना है, मगर ऐसा नहीं कह दो, अरे क्या कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, तुमको तो कर्म योग करना चाहिए। तो बुद्धि भेद कर देने से उसका क्या होगा? ऐसे आदमी को उसको ज्ञान नहीं है, उसको साइंस नहीं मालूम है, आपके ऊपर विश्वास करके कर्म करना भी बंद कर देगा। अब बताओ, कर्म करना बंद कर देगा तो फिर उसका परिवार का क्या होगा? इसलिए कहा कि बुद्धि भेद उनको ऐसा नहीं, उनको जाके आप जो है बड़ा हाई पेडेस्टल की चीजें नहीं बताओ। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानम, जो चेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। और विद्वान पूरी जोश के साथ में, जैसे अज्ञानी जोश के साथ में काम कर रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है इतना फल मिलेगा, इतना फल मिलेगा, इतना फल मिलेगा, उसी हिसाब से ज्ञानी को भी कर्म करना चाहिए। तो अज्ञानी कौन है? जिसमें अहंकार है और जिसमें कर्ता भाव है, यो सब अज्ञानी हैं। अहम कर्ता इति अहंकार, कर्ता भाव है जिसमें, जो कर्म फल के साथ में जुड़े हुए हैं, वो अंतःकरण में मोहित हैं, डेलुडेड हैं, उनको सही रास्ता नहीं पता है, इसलिए वो अज्ञानी हैं। और तत्वविद कौन है? तो तत्वविद का यहां पर बता रहे हैं कि प्रकृति क्रियामानानि गुणे कर्माणि सर्वसः अहंकार विमूढात्मा कर्ता इति मन्यते। कर्म कौन कर रहा है? अज्ञानी तो सोचता है मैं कर्म कर रहा हूं, अज्ञानी सोचता है मैं कर्म करता हूं। किसी भी परिवार में जाके पूछिए, भाई हेड ऑफ द फैमिली कौन है? हु इज द ब्रेड अर्नर? किसने घर बनाया? मैंने बनाया है, लेकिन मेरा घर देखिए, मैं करता हूं। तो भगवान कहते हैं अहंकार विमूढ़ आत्मा, बोले मूढ़ नहीं है, विमूढ़ है, विशेष रूपेण मूढ़, बुद्धि नहीं है, विशेष बुद्धि है ये, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अमिति मन्यते, अपने को कर्ता मानता है। कर्ता कौन है फिर? भगवान कहते हैं प्रकृति क्रियामाना नहीं गुणे कर्माणि सर्वस, बोले प्रकृति के गुण काम कर रहे हैं। हम लोगों ने आगे ने कई बार देखा है कि दुनिया में कितनी चीजें हैं, क्या है? आत्मा करता है, आत्मा करता है कि अकर्ता है? नॉन डूअर। अगर आत्मा नॉन डूअर है तो फिर डूअर कौन हुआ? दो ही तो चीजें हैं भाई, ये तो बड़ा सिंपल एग्जांपल। अनात्मा करता है, अनात्मा क्या है? प्रकृति है, माया है, माया करता है। और जीव कौन के? जीव कहता है मैं करता हूं। इसलिए भगवान कहते हैं तुम मूढ़ हो, काम तो प्रकृति कर रही है, काम प्रकृति कर रही है। भगवान इसको और साफ करते हैं, कैसे करती है? तत्वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। तत्वित्तु महाबाहो, तत्ववित जो तत्व को जानता है, महाबाहो है अर्जुन, उसको क्या मालूम है? बोले गुण कर्म विभाग ये मालूम है, गुण का विभाग मालूम है, कर्म का विभाग मालूम है, गुण से क्या क्या हुआ ये उसको मालूम है। गुण से क्या क्या हुआ? गुण से सत्व रजस तमस गुण है, सत्व रजस तमस से क्या क्या हुआ? सत्व गुण से मन बना, ज्ञानेंद्रिया बनी, रजस से प्राण बने, कर्मेंद्रिया बनी, और तमोगुण से ये शरीर बना और सारा ब्रह्मांड बना। ये तो हो गया गुण विभाग। कर्म विभाग क्या है? कर्म विभाग है कि इसके अंदर जो ज्ञानेंद्रियां हैं उसका क्या फंक्शन है, क्या कार्य है, आंख क्या करती है, कान क्या करते हैं, मन क्या करता है, सबके अलग अलग कार्य है। कान देख नहीं सकता, आंख सुन नहीं सकती, सबका अलग अलग काम है ना। तो तत्वविद को यह मालूम है कि किस गुण से क्या चीज बनी। तो यह शरीर किस गुण से बना उसको मालूम है, तीन गुण से बना है। और प्रत्येक अंग का फंक्शन क्या है वो भी उसको मालूम है। गुण कर्म विभाग यो गुना गुणे सुवर्तन्ते, गुना गुणे सुवर्तन्ते। पिछली बार हमने बताया था, कोई बता सकेगा क्या है गुना गुणे सुवर्तन्ते? हो गया ना 15 दिन में साफ।
Everyone acts by their own gunas. Depending on your gunas, you act according to your gunas.
हाँ, नहीं तो ठीक है, that is half answer. You act.
एक गुण दूसरे गुण से interact कर रहे हैं।
कैसे? वही तो बताओ हमको। देखो हमारा शरीर भी त्रिगुण से बना है। आपका शरीर? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो ट्रांजेक्शन किसके साथ हो रहा है? त्रिगुण का, त्रिगुण के साथ। अब त्रि जो है कॉमन है दोनों में, कॉमन फैक्टर को निकाल दिया, क्या बचा? गुना गुणेशु वर्तन्ते, है ना। अब जैसे मान लीजिए ये ग्लास है, ये किससे बना है? ये भी त्रिगुण से बना हुआ है। टेबल किससे बना है? त्रिगुण से बना है। मकान किससे बना है? त्रिगुण से बना है। अब इनके साथ हम ट्रांजेक्शन हो रहा है हमारा, तो हम क्या कहेंगे? गुना गुणेशु वर्तन्ते। गुना किसके है? प्रकृति के है। तो ट्रांजेक्शन कहां हो रहा है? माया के अंदर, प्रकृति के अंदर हो रहा है। चेयर किससे बनी है? त्रिगुण से। हम उसके ऊपर बैठे हुए हैं। गुना गुणेशु वर्तन्ते। हुआ क्लियर? याद रहेगा सारा जीवन। गुना गुणेशु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, मगर तत्वित उसके साथ में न सज्जते, अटैच नहीं होता है। हम क्यों अटैच हूं इसके साथ में? वो तो जानता है मैं इनको अनात्मा से अलग हूं, आत्मा अनात्मा से अलग है। उसको मालूम है गुण कर्म विभाग, गुण से क्या क्या बना और जो चीजें बनी उसका कर्म क्या है, यही गुण कर्म विभाग है। त्रिगुण से क्या बना? पंच महाभूत हैं, पंच महाभूत के अंदर प्रत्येक में सत्व रजस तमस है, उसमें से क्या क्या बना ये उसको मालूम है, और जो बना उसका काम क्या है ये भी उसको मालूम है। तो ऐसा व्यक्ति न सज्जते। प्रकृति गुण सम्मूढ़ा सज्जनते गुण कर्मसु, मगर अज्ञानी कैसे हैं? बोले इसके साथ में जुड़े हुए हैं, प्रकृति के गुणों के साथ में वो जुड़े हुए हैं। तत्वित जुड़ा नहीं है, अज्ञानी जुड़े हुए हैं। तान अकृष्ण विदो मंदान, बोले ये मंद लोग हैं, अकृष्णविद, इनको तत्व नहीं मालूम है। कृष्ण बिन न विचालयेत, कृष्ण बिन जो तत्व को जानता है वो इन लोगों को विचलित ना करे, इनको डिरेल मत कर दो। हमको तो उनको सही रास्ता दिखाना है ना। सही रास्ता दिखाने में हम क्या करेंगे? हम आपसे पहले पूछेंगे, भाई क्या करते हो? हम बहुत काम करते हैं। बोला अच्छा ठीक है, थोड़ा सेवा कर लिया करो। बहुत काम करते हो, थोड़ी सेवा कर लो। अब जो कोई आके कहे कि नहीं मैं काम भी करता हूँ थोड़ी सेवा भी करता हूँ, तो फिर उसको बोलेंगे थोड़ी पूजा कर लिया करो। कोई बोले कि नहीं मैं पूजा भी करता हूँ, बोले थोड़ा सा जो है मंत्र जाप किया करो, थोड़ा सा और उसको उठा देना है। कोई मंत्र जाप करता हो उसको बोले तो ठीक है थोड़ा सा अभी मेडिटेशन में बैठो, बोले नहीं इतना तो करता हूँ बहुत दिन से करता आ रहा हूँ, तो बोले चिन्मय मिशन आओ सत्संग करो। देखो आस्ते आस्ते उसको लाना है, आस्ते आस्ते उसको मोड़ना है कि हाँ भैया इधर आओ इस तरफ ऐसे घूमो सत्संग करो। अब सत्संग करते 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 फिर जो उसको ठाकुर रामकृष्ण कहते थे एक सत्संग एक बार किसी को मिल जाए तो ये जानो कि मोर को अगर 4 बजे शाम को अफीम खिला दो, किसी मोर को अगर अफीम खिला दो 4 बजे तो हर रोज वो 4 बजे अफीम खाने आएगा। उसी तरह सत्संग का ऐसा नशा है कि किसी को अगर एक बार मिल जाए तो वो खुशता है, फिर सत्संग कहाँ हो रहा है कहाँ हो रहा है, दौड़ता है उसके पीछे में। तो तत्वित जो है उसके कर्म अब बता दिए। ये मंद भक्ति क्या है तो यहां पर हमारे भागवत में आता है मंद मति मंद भाग्य। ये जितने भी ये अज्ञानी लोग हैं ना मंद मति मंद भाग्य हैं, मगर अगर इनकी मंदता हटानी है, मंदता क्या है, इट इज क्लाउडेड बाई समथिंग, अज्ञान से क्लाउडेड है ना, तो मंदता अगर हटानी है तो क्या करना होगा, तो कहते हैं सरस्वती रहस्य उपनिषद एक है, आपने तो नाम ही नहीं सुना होगा, उपनिषद किसको कहते हैं ही नहीं मालूम है, एक सरस्वती रहस्य उपनिषद है। बोलेगा अगर उसका पाठ करोगे उसको अगर समझ लोगे तो आपकी बुद्धि जो है गंगा की तरह प्रवाहित होनी शुरू करेगी, एकदम शुद्ध हो जाएगी। तो ज्ञानी को तत्वबुद्ध को क्या करना है, उसको आस्ते 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 नीचे उतर के अज्ञानी के लेवल पर आना है, अज्ञानी के लेवल पर आके उसको ज्ञान देना है। संत ज्ञानेश्वर बताते थे कि देखो जब छोटा बच्चा पैदा होता है ना तो उसको दूध केवल एक तरीके से पीना आता है, माता के स्तन से ही पिएगा, फिर आस्ते आस्ते फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर छोटी शीशी देते हैं, फिर उसके बाद शीशी बड़ी होती जाती है, फिर एक छोटा गिलास आता है, सीधा गिलास से नहीं पीता वो कभी दूध, नवजात शिशु कभी भी ग्लास से दूध नहीं पिएगा, चम्मच से भी नहीं पिएगा, पहले कुछ दिन के बाद में होता है, फिर ग्लास से। तो हम लोग फिर सब चांदी का ग्लास लाते हैं छोटा वाला, छोटा गिलास ये बच्चे का है, फिर जैसे जैसे बड़ा होता है बड़ा गिलास देते हैं, फिर जब बड़ा हो जाता है तो पंजाब ग्लास, अब लस्सी किसमें पीनी है, पंजाब ग्लास चाहिए उसको, मगर पंजाब ग्लास आप नवजात शिशु को नहीं पिला सकते। देखो सब महात्मा लोग के समझाने के तरीके हैं कि जो लोग नए आदमी घुसते हैं स्पिरिचुअलिटी में तो उनको आप ऐसे समझ के उनको समझाओ, उनको ब्रह्म सूत्र या पतंजलि सूत्र मत दे दो, पहले नहीं ले पाएंगे वो, उनके स्तर पर आ जाओ, उनके स्तर पर आके उनको समझाओ। गुरु जी बताते हैं कि कौन मंद है, मंद किसको कहते हैं, बोले एक कंस्ट्रक्शन कंपनी थी उसमें बहुत से इंप्लॉइज थे, बहुत लोग काम करते थे, एक सुपरवाइजर था, वो हफ्ते में एक दिन आता था सुपरवाइज करके बता जाता था चाचा आपको ये करना है इस हफ्ते में, ये करना। और जब हफ्ता आता था पैसे देने के लिए जो कैशियर आता था तो सबको गिन गिन के सब इंप्लॉय को पैसे दी, हफ्ते के बाद में सुपरवाइजर को भी पैसा मिले तो सबके लिफाफे पतले होते थे, सुपरवाइजर का लिफाफा मोटा होता था, मोटा होता था मतलब उसको तनख्वाह ज्यादा मिलती थी, सुपरवाइजर है इंप्लॉय की कम होती है। तो एक इंप्लॉय ने जाके उसको सुपरवाइजर से पूछा कि भाई आप तो हफ्ते में एक दिन आते हो और तनख्वाह इतनी आपको मिलती है तो आपको ज्यादा तनख्वाह क्यों मिलती है, तो बोलता ठीक है बताता हूं। तो बैठा हुआ था टेबल के ऊपर में, उसने सुपरवाइजर ने अपना हाथ रखा बोला इसके ऊपर तुम मुक्का मारो जोर से। हाँ, और जैसे ही जोर से मारा उसने हाथ हटा लिया। वर्कर को चोट लगी, अच्छी तरह से लगी। बोले इसलिए मेरे को तनख्वाह ज्यादा मिलती है। अब ये मंदबुद्धि अभी जाके कैसे समझाए अपने दूसरे साथियों को कि सुपरवाइजर को कैसे ज्यादा मिलता है। तो वो गया अपने दूसरे साथियों के पास में, बोलता मैं बताता हूँ क्यों उसको ज्यादा मिलता है। अब वो बेचारों के पास टेबल तो है नहीं कि हाथ रखे उसको बताए, तो उसने अपने हाथ यहाँ रखा। अब वो हाथ रखा, बोला मारो जोर से तमाचा। बोले इसलिए उसको ज्यादा तनख्वाह मिलती। देखो मंद बुद्धि है, देखो उसको ये भी नहीं समझ में आया कि मैं क्या कर रहा हूं। तो अभी तक जो अज्ञानियों का मन वासना से ढका हुआ है उनको आस्ते 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 बताना है। तो तत्व भी तो कैसे करता है ये तो हमने देख लिया। अब मूछों को हम लोग को क्या करना है? ज्ञानी को तो बता दिया तुम अज्ञानियों को विचलित नहीं करना, सीधा ब्रह्म सूत्र नहीं दे देना, मगर उनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मुमुच्छु कैसे काम करे ये बताने जा रहे हैं।
श्लोक नंबर 30।
मयि सर्वाणि कर्माणि
सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा
निराशीर्निर्ममो भूत्वा
युद्धस्वविगतज्वरः
मयि सर्वाणि कर्माणि सन्नस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्वविगतज्वरः।
गुरुदेव इसको तीन बार चैंट कराते थे, हमने दो बार किया, एक बार और करेंगे।
मयि सर्वाणि कर्माणि सन्नस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्वविगतज्वरः।
ये तृतीय अध्याय का प्राण श्लोक है। कैसे कर्मयोग करना है ये इसके अंदर बताया है। किसके लिए है? मुमुक्षु के लिए, सीकर के लिए, हम लोगों के लिए है। क्या है? मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा मतलब सारे कर्म मेरे लिए करो, मेरे लिए सारे कर्म करो। मेरे लिए कर्म करने का मतलब डेडिकेटेड टू मी, सारे कर्म मेरी प्रीति के लिए करो। भगवान किसको कह रहे हैं? अर्जुन को कह रहे हैं। हम लोग अर्जुन की जगह पर हम लोग हैं। तो कैसे सारे कर्म समर्पण करें? अध्यात्म चेतसा। अध्यात्म चेतसा में चेतसा में चेत मतलब माइंड, चेतसा माइंड, अध्यात्म आत्मा के अंदर आपका मन स्थित हो। तो आत्मा में रखो मतलब क्या? भगवान को याद रखो, सब समय भगवान याद में रहें, कर्म के टाइम में याद में रहें। और आप अपने को क्या मानो? इस भाव से कर्म करो कि मैं करता नहीं हूं, आई एम नॉट द डूअर, मैं करता नहीं हूं, क्योंकि भगवान भी करता है, मैं भी करता नहीं हूं। इस भाव से हमको अपने कर्म समर्पण करने हैं। कैसे करें? निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगच्छर। निराशी, निराशी मतलब आशा नहीं, आशा निराशा कोई आशा नहीं, निराशी कोई होप नहीं, एक्सपेक्टेशन नहीं, आशा रहित तो होकर करना है। अच्छा, निराशा का ये मतलब मत निकाल लेना कि डिजेक्टेड डिप्रेस्ड, ऑल दो अर्जुन वाज डिजेक्टेड डिप्रेस्ड। निराशी, निर्ममो, निर्ममो मतलब मेरा, मैं और मेरा, ये भाव भी नहीं होना चाहिए, ये ममत्व तो नहीं होना चाहिए। ये युद्धस्य विगत ज्वर, ज्वर रहित होकर करना है। ज्वर का क्या मतलब? क्या फ्लू मलेरिया ना हो तब करना ऐसा है क्या? नहीं, यहां पर शारीरिक ज्वर नहीं है, मानसिक ज्वर की बात कर रहे हैं। मानसिक ज्वर क्या है? मानसिक ज्वर है कि आपको ज्वर रहित कोई उत्तेजना ना हो मन के अंदर में, इस हिसाब से हमको कर्म करना है। सारे कर्म मेरे लिए हों। मई कौन है? वासुदेव परमेश्वर सर्वज्ञ सर्वात्मनी। अब देखो भगवान अपने आप को छुपा नहीं पाया। अब अर्जुन के सामने ये पहली बार भगवान कह रहे हैं कि सारे कर्म वसुदेव मैं तुम्हारे सामने जो खड़ा हूं, मैं कौन हूं? परमेश्वर तुम्हारे सामने जो बात कर रहा है वो कौन है? इज द परमेश्वर, इज परमात्मा, एंड हु इज ही? सर्वज्ञ, मैं सब कुछ जानता हूं। और कौन हूं? सर्वात्मनी, सबकी आत्मा मैं हूं। पहली बार भगवान अपनी आइडेंटिटी अर्जुन को डिस्क्लोज कर रहे हैं। मैं मेरे लिए सारे कर्म करो। अच्छा, पहले भगवान ने कहा था कि यज्ञार्थ कर्म अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन है, कि अगर यज्ञ रूपी कर्म नहीं करोगे तो वो क्या होगा? कर्म बंधन होगा। यज्ञ मतलब क्या? विष्णु। विष्णु मतलब क्या? ईश्वर। ईश्वर के लिए कर्म करना मतलब ईश्वर की प्रीति के लिए करना। अगर ईश्वर की प्रीति के लिए कर्म नहीं करोगे तो वो कर्म बांधेगा। अपनी प्रीति के लिए किया हुआ कर्म आपको बांधेगा, और ईश्वर की प्रीति के लिए किया हुआ कर्म आपको नहीं बांधेगा। तो ये कैसे हम करें? बोले विवेक बुद्धि। आपको ये विवेक बुद्धि लगानी है। वो विवेक बुद्धि क्या है? ये विवेक बुद्धि है कि मैं सेवक हूं और ईश्वर स्वामी है। अध्यात्म चेष्टा का मतलब शंकराचार्य जी लगाते हैं, विवेक बुद्धिया अहम कर्ता ईश्वराय भृत्यवत करोमि। ईश्वर का मैं नौकर हूं, भृत्य। तो मैं कौन हो गया? मैं सेवक हो गया। मैं काम कर रहा हूं मगर मैं सेवक हूं। देखो दास भाव आ गया यहां पर। हनुमान जी जितना भी काम करते थे दास भाव से करते थे। मैं सेवक हूं, सेवा भाव से आपको करना है। अगर आप ईश्वर की सेवा के हिसाब से करोगे तो ईश्वर खुश हो जाएंगे। देखो हॉस्पिटल के अंदर नर्स जो है ना, उसका भाव सेवा भाव रहता है, बराबर सेवा भाव। अगर मरीज ठीक हो जाए तब भी ठीक है, और अगर मरीज ना ठीक हो के जाए, मर भी जाए, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल उसका सेवा भाव है और कुछ नहीं है। हम लोग घर के अंदर देखो कहां उसका मन कहां लगा हुआ है, नर्स का केवल सेवा में मन लगा हुआ है। हम लोग घर में, यहां तो आप लोग नहीं कर पाते हैं, मगर आप लोग जब इंडिया में थे आप लोग के सबके घर में नौकर चाकर थी। एक एक घर में दो दो तीन तीन चार चार नौकर वहां अवेलेबल हैं। तो आपके जितने बच्चे उतने नौकरानी हैं, उतनी दैयाएं हैं, वो आती हैं काम करती हैं, एक एक बच्चे को एक एक जो है संभालती है दाई। और जब वो आती है या तो फुल टाइम है या पार्ट टाइम है, तो जब भी आएगी तो कहेगी मेरा हरी मेरा राम, आपके बच्चों को कहती है मेरा हरी मेरा राम, ऐसा करती है। तो उसका मन कहाँ है? जब वो मेरा हरी कहती है वो अपने बच्चे को याद करती है, उसका मन अपने घर में है। तो वैसे ही हमको काम यहां करना है, मन कहां देना है? अध्यात्म चेतसा, मन वहां रहना चाहिए। निराशी निर्मम होकर कर्म करो। अर्जुन ने देखा अहम ऐसा मम में थे, मगर अर्जुन ने जब युद्ध रोक दिया मतलब जब वो कलप्स कर गया, तो शंकराचार्य जी ने बताया कि उसको क्या रोग था? अर्जुन रोग, उसका रोग था अहम ऐसा मम एते, मैं इनका हूं और ये मेरे हैं, यही रोग था। ये रोग अभी तक है। ये मेरी पत्नी, मैं इनका पति, ये मेरे बच्चे, ये मेरे माता पिता, मैं इनका हूँ, वो मेरे हैं, ये रोग अभी तक चल रहा है। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि मम भाव को हटाओ और कर्म करो। कर्म तो आपको करना ही है, अपने बच्चों को, अपने स्पाउस को तो आपको देखना ही है, ममता हटा दो बस उसमें से और कर्म करो। मई सर्वाणी कर्माणी संन्यास्य अध्यात्म चेष्टा, सारे कर्म दिन रात जो भी करते हो मेरे लिए करो। तो कैसे होगा? भगवान माइंडेड होना होगा, भगवान माइंडेड। आपको संसार में लोग मिलेंगे ना मनी माइंडेड, मनी माइंडेड क्या करते हैं, दिन रात खाली मनी की चिंता करते हैं, सवेरे से उठ के खाली मनी कैसे होगा, कैसे पैसा आएगा, कैसे पैसा आएगा, कंटिन्यूअसली मनी माइंडेड होते हैं। कुछ लोग कंफर्ट माइंडेड होते हैं, कंफर्ट माइंडेड, बोले हम देश के लिए जान देने को तैयार हैं, हम जेल जाने को तैयार हैं, मगर पहले हमको ये बताओ कि जेल के अंदर एयर कंडीशन रूम है कि नहीं। कंफर्ट माइंडेड है। हमारे यहां पर कोलवान आश्रम है या दूसरे आश्रम है जहां पर रहने की व्यवस्था है भक्तों की, हमारे अमेरिका में तो ऐसे आश्रम नहीं है कि आपके बाहर के लोग आए आके रहें वहां पर। कोलवान के अंदर 1000 आदमी रह सकता है, इतने घर हैं, व्यवस्था है, 1000 आदमी एक साथ बैठ के खा सकते हैं, इतना बड़ा डाइनिंग हॉल है। तो जब वहां प्रवचन के लिए आते हैं ना तो पहले पूछते हैं अटैच बाथरूम है, डबल बेडरूम है कि फोर बेडेड है कि सिंगल बेडेड है, कॉटेज है आपके पास, लोग पूछते हैं, कंफर्ट माइंडेड। दुनिया में कई किस्म के लोग होते हैं, कुछ स्वामी जी जो लोग होते हैं कि मतलब वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, सेल्फ मतलब आत्मा में सेंटर्ड, कैपिटल एस ई एल एफ, बिग आई। आप उनसे कोई प्रश्न पूछो उस प्रश्न को घुमा के वो अध्यात्म में ले चले जाएंगे। रमन महर्षि ऐसा करते थे, कोई भी आदमी आता था मेरे को दुख है, बोले किसको दुख है बताओ, किसको दुख हो रहा है, आत्मा को तो कभी दुख होगा नहीं। वो पूछते थे तुम कौन हो बताओ, वो अपना नाम बताता था, बोले तो शरीर का नाम है, मैं इसका पुत्र हूं, बोलो तो सब शरीर के साथ रिलेशन है, सब बता रहे हो, हम इंजीनियर है डॉक्टर है, बोले ये सब छोड़ो, तुम कौन हो ये बताओ। तो कई जो है महात्मा ऐसे होते हैं कि वो घुमा फिरा के आपको अध्यात्म ले जाएंगे। और इसका कभी अध्यात्म चेष्टा का मतलब ये नहीं लगा लेना कि मैंने जो भी किया वो आपको दे दिया, मैंने चोरी की, मैंने झूठ बोला, भगवान ये तेरा है ले लो, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हमको वही काम करना है जो भगवान को, हम चोरी करेंगे तो भगवान खुश होंगे क्या? नहीं होंगे। तब चोरी करके बोलो ये ले लो आप पैसे, नहीं लेंगे, वो खुश नहीं होंगे उसमें। तो इस भाव से कर्म करना है। गुरुदेव बताते हैं कि देखो ये सांप जो है ना, सांप में जहर है, अगर उस सांप की जहर निकाल दें तो आप उस सांप के साथ खेल सकते हो। जितने भी वो सांप के जो होते हैं ना सपेरे, वो सब के सब वो जहर निकाल के तब उसकी माला बना के पहनते हैं। तो कर्म भी है एक वैसे ही, उसमें एक पॉइजन है। क्या पॉइजन है कर्म के अंदर? कर्म बांधता है, हर कर्म जो है बांधता है, केवल कर्म योग आपको जो है खोलता है। तो अगर उसका दोष निकालना है, कर्म का दोष को अगर निकालना है तो आपको क्या करना है? अपनी प्रीति के बदले ईश्वर की प्रीति करनी है। इसीलिए भगवान ने कहा तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। अगर आप अहंकार रहित कर्म करो, ईश्वर की प्रीति के लिए करो, सेवा के रूप में करो, मेरा है ऐसा करके अगर न करो, निराशी निर्मम होके करो, विगत ज्वर होके करो, तो जो है आप ठीक रास्ते पर चल रहे हो। ठीक रास्ते पर चल रहे हो। अब गुरुदेव इसका कैसे इंटरप्रिटेशन करते थे, निराशा मैंने आशा नहीं करना, आशा नहीं करना मतलब कर्म फल की आशा नहीं करना, कर्म फल की आशा नहीं करना मतलब कर्म के बाद में कर्म फल बाद में आता है, फ्यूचर में आता है। कभी आपको कर्म फल आगे मिला है कर्म करने के पहले? नहीं मिला है। पहले हम कर्म करते हैं फिर उसका फल आता है। तो गुरुदेव कहते हैं फल क्योंकि फ्यूचर में आता है इसलिए फ्यूचर की बात कर्म के टाइम में मत सोचो। क्या समझे आप? जब आप कर्म करते हो तो क्या कर्म फल मिलेगा जो फ्यूचर में आने वाला है, भविष्य में आने वाला है, उसकी चिंता अभी मत करो। एक लड़का परीक्षा दे रहा था। देखो परीक्षा में हम लोग जब जाते हैं ना तो पहले जब तक पेपर नहीं मिलता था तो बहुत नर्वस रहते हैं, और जैसे ही पेपर मिला एक बार पढ़ लिया देख लिया जहां जाए तो ठीक है, तब जो है ब्लड प्रेशर ठीक नॉर्मल पर आ जाता है। अब इस लड़के ने सोचा ये सब सारे के सारे तो हमको प्रश्न आते हैं, मेरे को तो इतने मार्क्स मिल जाएंगे, इतने मार्क्स मिल जाएंगे तो मैं पास हो गया, मेरी इंजीनियरिंग डिग्री आ गई, फिर तो मेरे को कैंपस के अंदर हमको नौकरी मिल गई, कैंपस में नौकरी मिल गई तो इतने पैसे मिल गए, इतने पैसे मिल गए तो फिर तो मैं घर खरीद दूंगा। तब तक ये ग्यामर आता है पेपर लेके चला जाता है। सोचते सोचते उसका इतना टाइम चला गया कि उसके घंटे खत्म हो गए और पेपर चला गया खत्म। इसलिए निराशी जब कर्म करो तब जो है फल की चिंता मत करो। निर्ममो, निर्ममो का मतलब ममत्व। ममत्व किससे होता है? जो चीज आपको प्राप्त हो गई है उससे ममत्व होगा। तो इसका मतलब इट रिलेट टू पास्ट, पास्ट में जो काम किया उसका फल आया, उस फल के साथ को आसक्ति हो गई तो आप कहते ये मेरा फल है, ये मेरा मकान है। अरे कब आया? आपने पास्ट में काम किया, आपने मकान बना लिया, अभी आपका मकान हो गया, अब इसमें ममता आ गई, तो ममता रिलेट टू पास्ट। अब किसी भी व्यक्ति से पूछो भाई आप क्या करते हो, क्या नाम है, उनका परिचय बताइए, तो आपका नाम बताएंगे रिलेटिंग टू पास्ट। अरे तो जन्म के टाइम में तुमको नाम मिला था। क्या करते हो? काम पास्ट, डिग्री पास्ट, सब कुछ वर्णन जो है रिलेट टू पास्ट। निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरा, इन द प्रेजेंट क्या करो? विगत ज्वरा, विगत ज्वरा मीन डोंट गेट एक्साइटेड। कई बार एक्साइटमेंट आ जाती है, अरे हो गया है तो अपने हाथ में है, तो एक्साइटमेंट में ही रहोगे तब भी आपका काम जो है ठीक नहीं होगा। देखो व्हेन द माइंड गोज इनटू द पास्ट और इन द फ्यूचर और प्रेजेंट भी अगर माइंड एक्साइटेड हो तो यू आर नॉट पुटिंग इन 100%, तो फिर आपको 100% रिजल्ट कैसे मिलेगा? बोले कभी भी नहीं मिल सकता। एक आदमी को एक इंटरव्यू में बुलाया गया नौकरी के लिए, बहुत दिन की चेष्टा कर रहा था, नौकरी में बुलाया, उसे पूछा नाम क्या है तुम्हारा, बोलता बीकॉम। एक्साइटेड, दूसरे किसी को बुलाया, बोला तुम्हारा नाम क्या, बोला अभी तो आपने बोला है, जो कोई इंटरव्यू को कहता है, अब मेरे को नाम क्यों पूछ रहे हो, अभी तो आपने जो नाम पुकारा वही है मेरा नाम। तो उसे पूछता भाई सबसे लंबी नदी क्या है, सबसे ऊंचा पहाड़ क्या है, तो कहता है कि अगर आप मेरे को वहां पोस्टिंग करने वाले हो तो मैं ही काम करने वाला है। प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, सब जगह प्रेजेंस ऑफ माइंड हो, अगर आप इसके सतर्क रहो तब तो होगा। तो भगवान हमको ये कह रहे हैं कि आप अपने कर्तव्य कर्म करो, सारे कर्म करो, ईश्वर की प्रीति के लिए करो। ईश्वर की प्रीति के लिए अगर आप कर्म करोगे तो हम मुच्छू लोक का जो है मन शुद्ध हो जाएगा, मन शुद्ध होने के बाद में ज्ञान प्राप्त होगा। इसके अलावा दूसरा तरीका नहीं है कर्म योग का। ये प्राण श्लोक है, इसको आप अच्छी तरह से मनन करके पकड़ करके रख लो, ये साइंस है, ये विज्ञान है और ये ऐसा काम करेगा, आपको फल देगा। अगर आपको कोई भी दुविधा हो, कोई भी इसमें डाउट हो इस साइंस के पीछे, तो अगले छत्र में आप मेरे को प्रश्न पूछ सकते हो। आपका इसके प्रति कोई भी किस्म का डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे काम करता है, मैं क्यों करूं इसको, क्या लाभ होगा, हमें क्या चाहिए, ठीक 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 आपको पता लग जाएगा। ठीक है, ओ
पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः, हरि ओम्।